प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 18 अप्रैल 2017 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए जो मैंने विषय चुना है, इनफैक्ट यह विषय एक मेरे प्रिय स्टूडेंट कहूं उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। स्टूडेंट ना कह के मैं कहूं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, उनके और उनके कुछ साथियों के द्वारा, और सच ये है कि उन्होंने सीधे सीधे प्रोवाइड भी नहीं किया है, है ना। उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया है और उस सजेशन को ही बेस बनाकर इनफैक्ट मैं आज के लाइफ मैनेजमेंट में कुछ आपसे अपने मन की बातें शेयर करना चाह रहा हूं। तो पहली बात तो यह है दोस्तों कि डेफिनेटली मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन यदि वह नियमित रूप से मेरे इस लाइफ मैनेजमेंट को सुनते हैं तो वो समझ जाएंगे कि किन्होंने ये बात कही थी, लेकिन वो इसे बिल्कुल भी अन्यथा न लें कि मैं उनकी बात का खंडन कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी मेरे प्रिय श्रोता, कोई भी अपनी ओपिनियन देने के लिए स्वतंत्र है और मैं आप सबकी इस स्वतंत्रता का पूरे खुले मन से स्वागत करता हूं। यह आपका अधिकार है और उससे भी बड़ी बात यह है कि यह मेरे लिए बहुत उपयोगी है, खाद की तरह है। मैं तो उनमें हूं जो कबीरदास के इस साखी पर बहुत विश्वास करता है कि निंदक नियरे राखिए। इनफैक्ट ये तो निंदा भी नहीं है, यह एकमात्र सजेशन है। मित्र मुझे ये लगा कि यह सजेशन बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन इस सजेशन में जो कमियां हैं वो केवल इस सजेशन की कमियां नहीं है। मैं इस सजेशन के माध्यम से या इन कमियों के माध्यम से हम अपने जीवन में जब कोई निर्णय लेते हैं, कोई बात दूसरों के सामने रखते हैं, तो हमसे कहां चूक हो जाती है, बस उधर मैं आप सबका ध्यान ले जाना चाहूंगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये केवल एक स्टूडेंट या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के विचार नहीं है, इससे पहले भी बहुत से मेल मेरे पास इस तरह के सजेशंस के आते थे, अभी भी लगातार आते रहते हैं। मुझे लगा कि अब इस विषय को ही एक बार क्यों ना उठाया जाए और इसके माध्यम से ही जिंदगी की बात क्यों ना की जाए। दोस्तों मुझे तो क्लू चाहिए, सूत्र चाहिए, जैसे कि एक धागे की शुरुआत मिल जाए और वो धागे की शुरुआत आप मुझे प्रोवाइड कर देते हैं और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि विषय आप दें और बात मैं अपनी कहूं। मैं अपने ही बातें अपने ही तरह से कहता रहूं तो बात नहीं बनता, आपकी बातों को अगर अपनी तरह से कहूं और इस तरह से कहूं कि वो सबकी बात बन जाए तब तो कुछ मजा भी है। तो मित्रों मैं सबसे पहले उनके सजेशन को रखता हूं, उनके सजेशन को सिर आंखों पर रखते हुए, लेकिन मेरे लिए इस सजेशन को स्वीकार कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, बस इसी का मैं विश्लेषण करूंगा और इसके माध्यम से आप ये भी समझ सकेंगे कि किसी भी बात को कैसे देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये लिखा कि मैं आपने देखा है कि खासकर लाइफ मैनेजमेंट में तो नहीं होता है, लेकिन जो इसका सेकेंड पार्ट होता है डेली ऑडियो लेक्चर, उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स के कुछ नाम लेता हूं, खासकर उन स्टूडेंट्स के नाम लेता हूं जो क्लास के लिए एडमिशन लेते हैं, और इसके बाद आखिरी में मैं उन स्टूडेंट्स के नाम, स्थान और प्रदेश के नाम लेता हूं जो ईमेल भेजते हैं। उन्होंने ये सजेशन दिया कि आप जो नाम और पता बताते, हालांकि मैं पता नहीं बताता हूं, मैं नाम बताता हूं, उनके जगह का उल्लेख करता हूं अगर उन्होंने लिखा है तो, आधे से अधिक तो अपनी जगह के बारे में लिखते ही नहीं, तो जगह और इसके बाद स्टेट कि किस स्टेट के वो हैं, ताकि उनकी एक पूरी पहचान तो पता लग सके। सुरेश रामदेव अब कहां से हैं कुछ तो पता लगे, तब एक चेहरा उभरता है कि अच्छा इस स्टेट से, तो मैं उनके नाम और पते बताता हूं। तो उन्होंने पहली बात तो ये लिखी कि ये जो नाम और पता है ये संक्षिप्त में बताया जाए। अब उससे भी क्या संक्षिप्त हो सकता है अब मेरी समझ में नहीं आता है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं नाम बताता हूं, इसके बाद अगर वो जगह का नाम लिख देते हैं तो जगह का नाम और स्टेट का नाम पता लग जाता है, तो स्टेट का नाम, बस यही होता है। दूसरा उन्होंने सजेशन दिया कि जो अभिवादन और धन्यवाद में मैं समय लगाता हूं, ज्यादा अच्छा होगा कि मैं उस समय का इस्तेमाल कुछ और जानकारियां देने के लिए करूं, यानी कि कहने का मतलब यह कि जो अभिवादन है और जो धन्यवाद है इसको मैं खत्म कर दूं, सामान्य तौर पर मेरी समझ में तो यही आया है, और उसकी जगह पर मैं कुछ कंटेंट बताऊं, कुछ पढ़ाई की बात करूं जो उनके सिविल सर्विस में सीधे सीधे काम आ जाए, ये उन्होंने लिखा है। ठीक है, बिल्कुल। इस बात के लिए तो मैं कम से कम धन्यवाद देना ही चाहूंगा कि आपका समय को लेकर के इतने ज्यादा सतर्क हैं कि उसका एक एक पल उपयोगी होना चाहिए। लेकिन मित्रों, मुझे जो अपने बात की शुरुआत करनी है, जो आप सबसे जो अर्ज करना है, वो ये है कि हम किसे समय का इस्तेमाल करना कहते हैं और किसे समय की बर्बादी करना कहते हैं। मित्रों, आज मैं इस फोरम से आप सबके अंदर छिपे एक व्यक्ति से आपका परिचय कराना चाहूंगा, और वो व्यक्ति मेरे अंदर भी है। एक व्यक्ति छिपा हुआ बैठा है। वो व्यक्ति जो छिपा हुआ बैठा है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का व्यक्ति है। खतरनाक इस रूप में कि वो है तो मेरी ही छाया, वो कोई दूसरा नहीं है, वो मैं ही हूं, लेकिन वो परफेक्टली मैं नहीं, वो मेरी छाया है, वो मेरा शेडो है। और उसकी सबसे बड़ी जो कमी है, जो मैंने कहा कि खतरनाक, वो खतरनाक इस मायने में है कि वो बहुत ही अधैर्यशाली है। मतलब उसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, वो बड़ी बेचैन आत्मा है, आप कह लीजिए, वो लगातार बेचैन रहता है। वो इस मायने में बहुत खतरनाक है कि जो उसे मिल रहा है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, जो नहीं मिल रहा है उस पर वो फोकस करता है और उसकी वो मांग करता है। ये बात अलग है कि जो मिल रहा है वो उसे ही अपनी झोली में पूरी तरह से भर के नहीं रख पाता, झोली पसारता नहीं है, उसको लगता है कि इसको छोड़कर अगर ये मिल जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। इसलिए ये आदमी बहुत खतरनाक है। ये आदमी इसलिए भी बहुत खतरनाक है क्योंकि ये किसी भी चीज को संपूर्णता में नहीं देख पाता है। एक कंप्लीटनेस में जैसे चीजों को देखना चाहिए, वो संपूर्णता में नहीं देख पाता है, वह उसे टुकड़े टुकड़े में देखता है। और उससे भी खतरनाक बात तो यह कि वो मुझे सजेस्ट करता है, वह मुझे कन्विंस करता है कि देखो ये जो छोटा सा टुकड़ा है यही संपूर्ण है। जैसे मित्रों, चलिए इसे मैं एक उदाहरण के जरिए आपके सामने रखना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है आपको सुंदर लग रहा है, कोई महिला है आपको सुंदर लग रही है, तो आप देखेंगे कि उनकी सुंदरता में एक विशिष्ट तत्व होता है। किसी की आंख बहुत सुंदर होगी, किसी का सीना बहुत चौड़ा होगा, किसी का डिलडौल बहुत ही बलिष्ठ, बहुत ही पुष्ट, बहुत ही आकर्षक होगा, किसी का रंग बहुत अच्छा होगा। तो वो एक तत्व होता है जो बहुत ज्यादा हमें अट्रैक्ट करता है, और वो एक तत्व उसके पूरे के पूरे तत्वों को सुंदर बना देता है। हम कहते हैं कि बहुत सुंदर है, उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, उसके बाल बहुत सुंदर हैं, उसकी भुजाएं देखो कि कितनी बलिष्ठ हैं, हम ये बात कह देते हैं। चलिए अब मैं एक उदाहरण लेता हूं कि मान लीजिए कि किसी की आंखें बहुत सुंदर हैं और उसकी वजह से हम उसे सुंदर कह रहे हैं। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि उसकी नाक गायब कर दी जाए, एकदम चपटी बना दी जाए, यानी कि सटा दिया जाए, गायब ही कर दिया जाए, चपटी भी हम क्यों कहें, गायब कर दिया जाए। तो अब ये जो आंख की सुंदरता को आधार बनाकर हम कह रहे थे कि वो बहुत सुंदर है, उस समय उसकी नाक थी, अब हमने उसकी नाक गायब कर दी है, तो अब आप क्या कहेंगे? आंख तो उसकी सुंदर है लेकिन अब आप उसे सुंदर नहीं कहेंगे। कोई बहुत अच्छा बलिष्ठ है, पुष्ट है, लेकिन उसका पेट बहुत निकला हुआ है, मान ली बहुत निकला हुआ है, एबनॉर्मल टाइप का है, तो मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मतलब इस रूप में मत लीजिएगा कि मैं पेट के निकलने की आलोचना कर रहा हूं, मैं अनुपात की बात कर रहा हूं। इनफैक्ट मैं जो बात कर रहा हूं वो रेशियो की बात कर रहा हूं, अनुपात की बात कर रहा हूं। पेट को जिस अनुपात में होना चाहिए, भुजाओं को जिस अनुपात में होना चाहिए, आंखों को जिस अनुपात में होना चाहिए, अगर वो सब अपने अपने अनुपात में है तो याद रखिए कि चाहे उसका रंग कुछ भी हो, चाहे उसकी हाइट कुछ भी हो, वो सुंदर लगने लगेगा। अनुपात में सुंदरता होती है, और अनुपात क्या है? एक संपूर्णता है। तो मेरे अंदर जो मेरा खतरनाक आदमी बैठा हुआ है, जो अपने आप को मेरा शुभचिंतक कहता है, मेरा हितैषी और मुझे अपना मित्र मानता है, वो खतरनाक इस मायने में है कि वो छोटे से टुकड़े को संपूर्ण मान लेता है और फिर कहता है कि यही सब कुछ है। वो संपूर्णता को लेकर चलता ही नहीं, कभी देखता ही नहीं, कभी इसको लेकर के संपूर्ण मान लेगा, कभी उसको लेकर के संपूर्ण मान लेगा। दोस्तों, ये इस एक मायने में और खतरनाक है। ये खतरनाक इस मायने में है कि इसको जो अपने लिए ठीक लगता है, जो इसको अपने लिए हितकर लगेगा, सुखकर लगेगा, प्लीजेंट लगेगा, उसको तो ये अच्छा घोषित कर देगा, लेकिन जो इसको अपने लिए हितकर नहीं लगेगा, जिसमें वो खुद शामिल नहीं हो पा रहा है, उसे वो बेकार घोषित कर देगा और मुझसे कहलवाना चाहेगा कि इसे रिजेक्ट करो। बहुत इनपेशेंट व्यक्ति है जो मेरे अंदर बैठा हुआ है। दोस्तों हमें इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे चलिए मैं एक और उदाहरण देता हूं इम्पेशेंट के बारे में। मित्रों हम सब जब चाहे बाइक से जा रहे हों या कार से जा रहे हों, और आप सबके पास इसका अनुभव होगा खासकर शहरों में, भोपाल में मैंने अक्सर देखा है कि रेड लाइट है। आजकल टाइमिंग्स दिखाते हैं रेड लाइट में कि अब 40 मिनट 39 मिनट 38 37 क्रमशः कम होता हुआ दिखाते हैं कि अब आपको वेट करने में इतना ही वक्त बाकी है। और मैं देखता हूं कि जब 5-6 सेकेंड बचे हुए होते हैं तब लोग क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो 5-6 सेकेंड भी वो वेट नहीं कर सकते, जबकि उनको वेट करना चाहिए, क्योंकि उधर वाले को तो दिखाई दे रहा है ना कि अभी 5-6 सेकेंड मेरे निकलने में बाकी हैं। वो तेजी से आ सकता है क्योंकि 5-6 सेकेंड बाकी हैं, तो वो तेजी से निकलना चाहेगा और पता लगा कि आप भी इधर से निकल रहे हैं, हो गई टक्कर। वो 5-6 सेकेंड का उनके पास वेट करने का धैर्य नहीं है। और मजेदार बात यह है कि वो आगे जाकर के आपको खड़े मिल जाएंगे। आप वेट कर रहे थे, आपने ग्रीन लाइट होने का इंतजार किया, फिर आप इत्मीनान से गए तो वहां वो खड़े मिल जाएंगे। और चलिए वहां वो खड़े न भी मिले तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला और घर ही पहुंच गए, 5-6 सेकेंड पहले पहुंच गए। टोटल मिला के हर जगह आपने इसी तरह का उल्लंघन किया होगा तो आपने 2 मिनट बचा लिए होंगे। आप उस बचे हुए 2 मिनट का क्या कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए। तो क्या कर रहे हैं 2 मिनट पहले पहुंच करके? कुछ नहीं कर रहे। तो ये कौन करा रहा है? मेरे अंदर का जो इम्पेशेंट, जो मैं बैठा हुआ, जो अधैर्य वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। मित्रों मैंने एक व्यक्ति की पहचान कराई है, वो व्यक्ति मेरे अंदर भी है और आप सबके अंदर भी है। प्लीज इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। और इस तरह के जो वाक्य सजेशन, समीक्षा, निष्कर्ष जो निकलते हैं, याद रखिए ये मेरे अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वही ये सारी बातें निकालता है। जो 20-22 मिनट तक जो बात कही जा रही है फोकस उस पर नहीं है। जो हार्डली अगर कैलकुलेट किया जाए कि मैं अभिवादन और धन्यवाद और नाम पते बताता हूं तो उसमें टोटल कितना टाइम लेता हूं, तो मेरा दावा है कि आप कैलकुलेट करके ले देख लीजिए, 1.5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको। मैक्सिमम 2 मिनट्स अगर लिस्ट लंबी हो गई तो। अगर 25 मिनट इवन मोर देन 25 मिनट मैं अगर मैं 2 मिनट इसके लिए ले लेता हूं तो 23 मिनट तो काम के हैं। क्या आप 23 मिनट पर फोकस कर पाते हैं? नहीं, जो मिला है उस पर फोकस नहीं है, जो 2 मिनट और होना चाहिए था फोकस उस पर है। मतलब इस घटनाओं को लेकर के आप अब मेरे अंदर जो आदमी बैठा हुआ है उसके चरित्र का विश्लेषण कर सकते हैं। जब मैं किसी से भी मिलूंगा तो क्या अभिवादन मुझे नहीं करना चाहिए? या वो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं क्या वो यूपीएससी बोर्ड के सामने जाएंगे तो सीधे कहेंगे कि मुझसे तो प्रश्न पूछना शुरू कीजिए? आप अभिवादन करते हैं, ये व्यवहार है, ये संपूर्णता है। अभिवादन भी करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, यह सौंदर्य की संपूर्णता है। तो मैं एक ऐसे आंख के सौंदर्य की कल्पना कर रहा हूं जिसके शरीर पर नाक ही नहीं है, यह भी वही व्यक्ति है। तो मैंने अभी जितने भी प्रतीकों के माध्यम से बात की है, एक व्यक्ति के चरित्र को बताया है। मित्रों उस व्यक्ति के चरित्र में इसके जो वाक्य हैं उसके रहस्य आप ढूंढेंगे तो बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो दोस्तों वक्त हो चुका है, विषय थोड़ा सा मजेदार था और लंबी बात की जा सकती थी, लेकिन अब मेरी ये बाध्यता है कि मैं इसे अब यहीं समाप्त करूं। तो दोस्तों इजाजत चाहूंगा, आप सब इस पर अपने अपने ढंग से विचार करें और बहुत अच्छा मुझे लगेगा कि अगर आप अपने विचार मुझ तक भी पहुंचाएं तो मेरा अब आप अभिवादन स्वीकार करें। मित्रों नमस्कार।